नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के अतिक्रमण को लेकर भारत तिब्बत सीमा पुलिस से संबंधित रिपोर्ट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा कि किसी भी चिकित्सक को उसके मूल काडर में वापस भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है। करनाल स्थित महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय को कृषि व्यापार शिखर सम्मेलन व पुरस्कार नामक संस्था द्वारा उत्कृष्ट उद्यान विश्वविद्यालय पुरस्कार से नवाजा गया। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ और फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 31.5 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के अतिक्रमण को लेकर भारत तिब्बत सीमा पुलिस से संबंधित रिपोर्ट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि ये सोशल मीडिया पोस्ट राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति संवेदनशील मुद्दे को लेकर दुष्प्रचार और द्वेषपूर्ण भावना फैलाती है। चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा है कि मीडिया के एक हिस्से में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा चिकित्सकों को उनके मूल काडर में वापस भेजने के आदेश बारे प्रकाशित हुआ समाचार भ्रामक है और तथ्यों पर आधारित नहीं है। चंडीगढ़ प्रशासन के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि किसी भी चिकित्सक को उसके मूल काडर में वापस भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गत 6 माह में केवल 60 चिकित्सकों को उनके मूल काडर में भेजा गया है। उनमें से 2 की आयु सेवानिवृत्ति के करीब थी और अन्य 5 मामलों में प्रशासनिक कारण थे। प्रशासन ने कहा है कि नए चिकित्सकों की नियुक्ति के बावजूद चंडीगढ़ में चिकित्सकों की कमी है और ऐसी परिस्थिति में किसी भी चिकित्सक को बिना कारण वापस भेजने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह भी कहा गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष में शहर में प्रतिनियुक्ति पर काम करने के इच्छुक आसपास के राज्यों के चिकित्सकों के साथ 3 दौर की बातचीत हुई है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं व दिव्यांग मतदाताओं को घर से ही मतपत्र द्वारा मतदान करने की सुविधा दी है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी BLO अपने क्षेत्र में घर से मतदान करने के इच्छुक इन दोनों वर्गों के मतदाताओं की जानकारी लेकर उनकी घर से मतदान के लिए आवेदन करने में मदद करेंगे। निर्वाचन आयोग ऐसे आवेदकों का घर से ही मतदान सुनिश्चित करेगा। श्री अग्रवाल ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारियों को युवाओं को वोट करवाने के लिए जागरूक करने के लिए कहा गया है ताकि 1 अप्रैल को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा 26 अप्रैल तक अपना वोट बनवाकर 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कर सके। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं को किसी अन्य स्थान पर अपना वोट स्थानांतरित करवाना है तो वो भी निर्वाचन आयोग की वेबसाइट अथवा ऐप के माध्यम से या चुनाव कार्यालय में जाकर निर्धारित फॉर्म भर सकते हैं। जींद जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी अस्पतालों और प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में OPD पर्ची पर मतदाता जागरूकता संदेश की मोहर लगाकर मरीजों को मतदान के प्रति जागरूक किया जाएगा। सिविल सर्जन डॉ. गोपाल गोयल ने आज जींद जिला मुख्यालय पर इस अनूठी पहल की शुरुआत की। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में डॉ. गोयल ने कहा कि जब समूचा देश चुनाव का पर्व देश का गर्व की भावना के साथ चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहा है तो अधिक से अधिक मतदाताओं को लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने के लिए जागरूक करने हेतु हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि OPD पर्ची पर मरीजों को यह संदेश दिया गया है कि वे अपना वोट अवश्य बनवाएं और मतदान जरूर करें। पर्ची पर लगने वाली मोहर में चुनाव का गर्व देश का पर्व स्लोगन भी शामिल किया गया है। सिविल सर्जन ने कहा कि इस पहल के साथ ये दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि स्वास्थ्यकर्मी मरीजों को मौखिक तौर पर भी मतदान के बारे में बताएंगे। करनाल स्थित महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट उद्यान विश्वविद्यालय पुरस्कार से नवाजा गया है। विश्वविद्यालय को यह पुरस्कार कृषि व्यापार शिखर सम्मेलन व पुरस्कार नामक संस्था द्वारा हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में बागवानी क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया गया। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि विश्वविद्यालय को यह पुरस्कार जैविक सूक्ष्म जीवों में अनुसंधान के दौरान ऐसे सूक्ष्म जीव संबंधित जैव आदानों की पहचान के लिए मिला है जिनका बागवानी फसलों को सुरक्षित रखने व गुणवत्तापूर्ण उत्पादन लेने में प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके उपयोग से खेतों में 20 से 25% कम रासायनिक उर्वरकों की जरूरत पड़ेगी। प्रवक्ता ने कहा कि महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक गुणवत्तापूर्ण पैदावार बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं ताकि किसान का खर्च कम हो और आमदनी बढ़ने से वे आर्थिक तौर पर समृद्ध हो। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव एस नारायणन ने 6 दिवसीय राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। सचिव एस नारायणन, कुरुक्षेत्र से उपायुक्त शांतनु शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. वैशाली शर्मा एवं अन्य अधिकारियों ने ब्रह्म सरोवर में नौकाओं को झंडी दिखाकर व दीप प्रज्वलित कर आज से 20 अप्रैल तक चलने वाले इस शिविर का उद्घाटन किया। प्रदेश भर से आए लगभग 150 प्रशिक्षणार्थियों को अपने संदेश देते हुए सचिव ने कहा कि इस शिविर में हर वर्ष प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को फिर से तरोताजा करने के लिए मास्टर प्रशिक्षकों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि ये शिविर कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके द्वारा यहां से प्रशिक्षण ग्रहण करने के बाद कहीं पर भी आने वाली आपदा में किसी की जान को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष प्रदेश में बाढ़ के कारण लगभग 47 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, इसलिए इस शिविर की अहमियत को समझने की जरूरत है। महेंद्रगढ़ के कनीना में स्कूल बस हादसे के बाद स्कूल बसों की जांच निरंतर जारी है। पानीपत के उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि आज जिले में विभिन्न स्कूलों के 70 वाहनों की जांच की गई और खामियां पाए जाने पर 10 वाहनों के चालान किए गए और 4 वाहनों को कब्जे में लिया गया। उधर भिवानी में आज प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के बैनर तले स्कूल संचालकों ने बैठक की एवं बस हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के अभिभावकों के प्रति शोक व्यक्त किया। एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने कहा कि प्रशासन जिन स्कूलों की बसों में कमी है उनके खिलाफ ही कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि स्कूलों की नई बसों के चालान काटे जा रहे हैं, अगर 2 दिन तक ये सब नहीं रुका तो 19 अप्रैल को प्रदेश के सभी निजी स्कूलों की बसों की चाबियां जिला उपायुक्तों को सौंप दी जाएंगी। फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 31.5 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया है। पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान बाबा तथा आकाश के तौर पर हुई है। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के बंदायू के रहने वाले हैं जो फरीदाबाद के सिकरी गांव में किराए पर रह रहे थे। उन्होंने बताया कि आरोपी बाबा के कब्जे से 16 किलो 200 ग्राम तक आकाश के कब्जे से 15 किलो 300 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया गया है। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि दोनों फरीदाबाद में एक ट्रक चालक के साथ सहायक का काम करते हैं, उत्तर प्रदेश से डोडा पोस्ट लाकर फरीदाबाद में बेचते थे। पंचकुला जिले की मंडियों में अब तक 4604 टन से अधिक गेहूं और 628 टन से अधिक सरसों की खरीद की गई है और 584 टन सरसों और 320 टन गेहूं का उठान किया जा चुका है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि हैफे द्वारा 584 टन सरसों का उठान किया गया है, जिसमें से 386 टन सरसों रायपुर रानी अनाज मंडी तथा 198 टन सरसों बरवाला अनाज मंडी से उठाई गई है। इसी तरह 320 टन गेहूं में से हैफेड ने रायपुर रानी अनाज मंडी से 160 टन और हरियाणा भंडारण निगम ने बरवाला अनाज मंडी से 160 टन गेहूं उठाया है। उधर कैथल जिले में विभिन्न एजेंसियों द्वारा कल शाम तक 78,774 टन गेहूं की खरीद की गई है। कैथल के उपायुक्त प्रशांत पवार ने बताया कि जिले में हुई गेहूं की कुल आवक में से 23,939 टन गेहूं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा, 26,880 टन हैफेड द्वारा तथा 27,955 टन गेहूं हरियाणा भंडारण निगम द्वारा खरीदा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के अतिक्रमण को लेकर भारत तिब्बत सीमा पुलिस से संबंधित रिपोर्ट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा है कि किसी भी चिकित्सक को उसके मूल काडर में वापस भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है। करनाल स्थित महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय को कृषि व्यापार शिखर सम्मेलन एवं पुरस्कार नामक संस्था द्वारा उत्कृष्ट उद्यान विश्वविद्यालय पुरस्कार से नवाजा गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।